पृष्ठ संख्या 91। भारतेंदु युग के कई लेखकों का उत्तर काल द्विवेदी युग में समा जाता है। इन दोनों युगों की भावभूमि में कुछ ऐसी समता है कि कहीं कोई संधि काल नहीं मिलता, यद्यपि कि दोनों युगों के नेताओं के चरित्र में काफी कुछ अंतर दिखता है। भारतेंदु मंडल आत्मीयता के भाव पर बना था, द्विवेदी मंडल अनुशासन के, जबकि भारतेंदु अपने वृत्त के निश्चय ही सबसे बड़े रचनाकार थे और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनात्मक स्तर पर अपने शिष्यों मैथिली शरणगुप्त या कि प्रेमचंद से छोटे थे। भारतेंदु के व्यक्तित्व में बंगाल की कोमलता और भावुकता थी। आचार्य द्विवेदी के व्यक्तित्व में महाराष्ट्र की कठोरता और वस्तुन्मुखता। हिंदी क्षेत्र के पुनर्जागरण ने रचनात्मक भाव से दोनों सहयोगी प्रभावों को यो आत्मसात किया। विविध पुरातत्व विषयों के संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखन का विवेचन करते हुए अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में रामविलास शर्मा लिखते हैं, पृष्ठ संख्या 92। द्विवेदी जी के इस कोटि के लेखन का सीधा संबंध भारत भारती से वैसे ही है जैसे भारत की वर्तमान आर्थिक अवस्था का चित्रण करते हुए वे भुखमरी, जमींदारों के अत्याचार, महाजनों की सूदखोरी और किसानों की तबाही की बातें करते हैं तो लगता है कि हम प्रेमचंद की कथा संसार में घूम रहे हैं। द्विवेदी जी कथा लेखक नहीं थे और मैथिली शरणगुप्त की तुलना में कवि भी बहुत साधारण थे, किंतु वैचारिक स्तर पर वह इन दोनों से आगे हैं। इन दोनों के काव्य संसार और कथा संसार की रूपरेखाएं उनके गद्य में स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दृष्टि से उन्हें युग निर्माता कहना पूर्णतः संगत है, पृष्ठ 121। रामविलास शर्मा अपनी आलोचना के दौरान वैचारिक स्तर के विश्लेषण में सानी नहीं रखते। उन्होंने भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी और निराला तीनों पर विशिष्ट आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किए हैं, पर जैसा उनका तादात्म्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से बनता है वैसा अन्यों से नहीं। और इस प्रसंग में विश्लेषण एकदम सही है कि मैथिली शरणगुप्त और प्रेमचंद का वैचारिक निर्देशन आचार्य द्विवेदी करते हैं, इसलिए अपेक्षाकृत ऊने रचनाकार होने पर भी युग निर्माता वे ही हैं। वह कला गुरु धन्य है जिसके शिष्य रचना प्रक्रिया के स्तर पर उससे आगे निकल जाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ओर और मैथिली शरणगुप्त, प्रेमचंद तथा एक सीमा तक निराला के बीच ऐसा ही प्रेरणा संबंध देखने को मिलता है। आधुनिक हिंदी में रीतिवाद विरोधी अभियान आचार्य द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के एकदम आरंभिक अंकों से ही चलाते हैं, जिसमें आगे चलकर सहयोग एक और मैथिली शरणगुप्त अपने लेखों के माध्यम से सरस्वती में ही प्रकाशित निबंध हिंदी कविता किस ढंग की हो देते हैं और दूसरी ओर सुमित्रानंदन पंत तथा निराला अपनी भूमिकाओं और पत्रकारिता से। भारतेंदु युग के बाद हिंदी क्षेत्र में शिक्षा साक्षरता का प्रभाव बढ़ने लगा था। खड़ी बोली कविता और गद्य दोनों के लिए केंद्रीय भाषा बन रही थी, यद्यपि कविता में ब्रजभाषा के कुछ समर्थक अभी अपने मत पर दृढ़ बने थे। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में कविता के लिए खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन अयोध्या प्रसाद खत्री ने वैसी ही निश्चय से किया जैसे नागरी अक्षरों के लिए आंदोलन उस समय पंडित गौरी दत्त कर रहे थे। नई स्थिति में द्विवेदी युग का लेखक अपनी रचना नीति को किसी सीमा तक बदलता है। शिक्षा और व्यवसायों के प्रचलन से इस समय तक मध्य वर्ग का स्वरूप बनकर उभर रहा था और अधिकांश में यही लोग देश में समाज सुधार और आर्थिक राजनीतिक स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील थे। द्विवेदी युग का लेखक इसी वर्ग से अपने को जोड़ता है, इसी में से वह पनपता है और अधिकतर इसी को संबोधित करता है। भारतेंदु युग के लेखकों के कार्यक्रम में तीन प्रधान अंगों की ओर संकेत किया जा चुका है, पत्रकारिता, नाटक लेखन और अभिनय तथा कजली, लावनी, आल्हा जैसे लोक काव्यों रूपों का प्रयोग। द्विवेदी युग का लेखक इनमें से बात के दृश्य श्रव्य रूपों को छोड़ देता है, उसका बल अब पाठ्य रूप पर अधिक है, फलता नाटक और लोक रूप छूट जाते हैं। शिष्ट सृजनात्मक रूपों में उसकी प्रतिभा अधिक निखरती है, कविता, उपन्यास और कहानी, पर जीवन की पाठशाला का सतत विद्यार्थी रहने के लिए वह पत्रकारिता का साथ नहीं छोड़ता। भारतेंदु युग के अधिसंख्य लेखक पत्रकार भी थे, यह क्रम आगे बराबर चला। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, छायावादी कवियों में प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी, फिर छायावाद उत्तर काल में अज्ञेय, शमशेर और रघुवीर सहाय तक प्रधान साहित्य धारा के प्रभाव में सक्रिय सभी लेखक या तो आजीविका के लिए या शौकिया पत्रकारिता से जुड़े रहे। उदारतावादी केंद्र से अकबर इलाहाबादी ने मूल मंत्र बताया, जब तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो, पृष्ठ संख्या 93। भारतेंदु युग के एक और माध्यम को द्विवेदी युग के कुछ लेखकों ने पकड़े रखा, वह था समस्या पूर्ति का माध्यम। भारतेंदु मंडल के लेखकों ने अधिकतर ब्रज भाषा में समस्या पूर्तियां की और इनका केंद्र काशी रहा। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति की भाषा खड़ी बोली हो गई, छंद पुराने ही रहे, कवित्व सवैया और केंद्र हो गया कानपुर जो उस समय के लावनी बाजों का गढ़ था। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के नेतृत्व में जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी नत्था प्रसाद दीक्षित, मिलिंद अनूप शर्मा तथा उनके कुछ अन्य सहयोगियों ने खड़ी बोली कवित्ती सवैया में विशेष रूप से कार्य किया। समस्या पूर्ति एक तरह से भारतेंदु युगीन लोक माध्यमों और आगे के छायावाद युगीन काव्य के बीच की कड़ी थी, जिसमें कवि वृत्ति की सामूहिक वृत्ति और रचनाकार की निजी सृजनात्मक क्षमता का सामंजस्य रखा गया था। अधिकतर कवि सम्मेलनों में समस्या पूर्ति के आयोजन होते थे और इस रूप में समस्या पूर्ति लोक माध्यमों की तरह सार्वजनिक प्रदर्शन था। एक ते वह गई द्वे तस्वीरें, कहानी रह जाएगी जैसी ब्रजभाषा या खड़ी बोली समस्या की पूर्तियां करके अलग अलग कवि इन्हें सम्मेलनों या गोष्ठियों में सुनाते थे। आरंभिक खड़ी बोली काव्य को प्रचारित प्रसारित करने में इन समस्या पूर्ति सम्मेलनों का विशेष योगदान रहा है। रीतिकालीन राज्याश्रय से निकालकर कविता को सीधे जनाश्रय में लाने का यह पहला महत्वपूर्ण कदम था। समस्या पूर्ति के सीमित दायरे से बाहर भी इन कवियों ने प्रसिद्धि प्राप्त की। सरस्वती में अपने उत्तराधिकारी पंडित देवी दत्त शुक्ल के नाम 5/9/29 को कानपुर से लिखे गए एक पत्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, कानपुर के पंडित जगदम्बा प्रसाद हितैषी बड़े अच्छे कवि हैं। सरस्वती के कविता स्तंभ को चमकाने के लिए मैंने उनसे कहा था कि आप वो कभी कभी कविता भेजा करें। उन्होंने शायद भेजा भी, पर पुरस्कार देना तो दूर, आपने उन्हें सरस्वती तक न भेजी, अब भेजिए। पहाड़ी पंथ से उनकी कविता हजार दर्जे अच्छी होती है। सम्मेलन पत्रिका पत्र विशेषांक भाग 68 संख्या 1-2। यह ठीक है कि पत्र में व्यक्त मत एक सीमा तक तात्कालिक होता है और उसे सुचिंतित भी नहीं कहा जा सकता, पर उससे पत्र लेखक की मानसिकता का पता अवश्य चलता है। जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी और सुमित्रा नंदन पंत खड़ी बोली के समकालीन कवि थे। आचार्य द्विवेदी ने दोनों को प्रोत्साहन दिया। एक कवित्व सवैया शैली में लिख रहे थे, दूसरे उस नई काव्यधारा से जुड़े थे जिसे बाद में छायावाद नाम दिया गया। आज 1984 में जानकर बड़ा अटपटा लगता है, जबकि तीनों संबद्ध व्यक्ति शरीर रूप में नहीं है, कि आचार्य द्विवेदी हितैषी और पंत की तुलना में हितैषी को बड़ा कवि मानते हैं। पत्र के रूप में उन्होंने अपने मन की बात प्रकट कर दी है, सार्वजनिक रूप में शायद वैसा लिखते या कहते नहीं। यही दूसरे आचार्य की याद आती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जिन्होंने हितैषी का उल्लेख अपने इतिहास में एक प्रिय कवि के रूप में तो किया, पर ऐतिहासिक और कलात्मक मूल्यांकन में सुमित्रा नंदन पंत को आधुनिक युग की नई धारा का सबसे महत्वपूर्ण कवि माना। यह अलग बात है कि परवर्ती आलोचना ने प्रसाद और निराला के बाद पंत को स्थान दिया। भारतेंदु ने मानव प्रतीक रूप में कुछ कविताएं खड़ी बोली में लिखी थी। द्विवेदी युग में कविता क्रमशः पूरे तौर पर खड़ी बोली में हो जाती है। इस समय का काव्य प्रवाह हमें दो धाराओं में दिखाई देता है। एक धारा के प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, पांडेबंधु रूप नारायण पांडे तथा राम नरेश त्रिपाठी। दूसरी धारा में है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, नाथुराम शंकर पृष्ठ संख्या 94 शर्मा, रामचरित उपाध्याय तथा स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य की दोनों मूल वृत्तियां रोमांटिक तथा क्लासिक जैसे यहाँ एक साथ प्रतिफलित हो रही हैं। काव्य भाषा को लेकर भारतेंदु काल में लगातार द्वैत की भावना बनी रही। मान्यता यह थी कि कविता ब्रजभाषा में हो और गद्य खड़ी बोली में। कविता में व्यापक रूप से खड़ी बोली को प्रयुक्त करने का श्रेय श्रीधर पाठक को है, जो स्वयं व्यक्तिगत रूप में ठेठ ब्रज क्षेत्र के निवासी थे। यह ठीक है कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को कविता और गद्य में समभाव से प्रतिष्ठित करने का ऐतिहासिक श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को है, पर रचनात्मक स्तर पर इस समस्या से पहले श्रीधर पाठक जूझे। इस काव्यधारा को उनके कृतित्व के संदर्भ में ठीक ही स्वच्छंदतावादी कहा गया है। रोचक संयोग यह है कि श्रीधर पाठक ने एक अर्ध गंभीर और अर्ध विनोदी प्रसंग में स्वयं अपने को स्वच्छंद कवि घोषित किया था। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषताओं में है वर्ण का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण और बैलड या कथा गीत का प्रयोग और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की स्वीकृति। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वच्छंदतावादी काव्यधारा ने जीवन से लगाव की एक भूमिका तैयार की, जो आगे चलकर छायावाद में और गहरी हो जाती है। अंग्रेजी के पूर्व स्वच्छंदतावादी काव्य से कुछ संपर्क बिंदु भी यहाँ दर्शावे हैं। श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ के कई प्रबंध काव्यों का अनुवाद किया और कुछ स्फुट काव्य की रचना की। इन स्फुट कविताओं में से एक बड़ी प्रसिद्ध हुई जगत सच्चाई सार, और उनमें से भी एक पंक्ति विशेष रूप से, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। पुनर्जागरण का मूल मंत्र जैसे यहाँ अनायास एक पंक्ति में ध्वनित हो रहा हो। एक ओर खड़ी बोली का खड़ापन है तो दूसरी ओर संदेश की निर्भ्रांतता। श्रीधर पाठक के प्रकृति काव्य में यदि जीवन से लगाव की ओर संकेत है तो वहीं अहिकता का भाव भी फूटता दिखाई देता है। ये दोनों प्रवृत्तियां अपने में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रकृति को यहाँ रीतिकाल जैसे उद्दीपन की भूमिका से मुक्त किया गया। उत्तर रीतिकाल में नारी को महज भोग्य उपकरण मान लिया गया था, कम से कम उस युग के घटिया काव्य की ध्वनि यही थी। छायावाद ने नारी को इस निष्क्रिय शिथिल रूप में चित्रित करने का विरोध किया। कुछ वैसे ही स्वच्छंदतावाद ने अग्रणी स्थिति में प्रकृति को निष्क्रिय सजावट के तौर पर नहीं देखा, उसे अपने में जीवन का एक सजीव पक्ष मानकर चित्रित किया। इस रूप में श्रीधर पाठक और सुमित्रानंदन पंत के बीच वरिष्ठ और कनिष्ठ कवि जैसा सहयोग केवल एक नगर इलाहाबाद में निवास के कारण नहीं था, वरन यह स्वच्छंदतावाद का क्रमशः छायावाद के रूप में समृद्धता और विकास था। श्रीधर पाठक उन विरल रचनाकारों में हैं जिनकी प्रशंसा में हिंदी साहित्य के सबसे बड़े संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा सबसे बड़े आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने कविताएं लिखी थी। यानी अपने युग की रचनाशीलता को संपादक और आलोचक ने सही समझा, जिससे इन प्रमुख गद्यकारों में कवित्व तो संक्रमित किया। सबके उदीयमान कवि ने तो अपनी रचना प्रज्ञा से ही नई सृजनशीलता को पहचान लिया था। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, यह एक निरा संयोग हो सकता है और ऐतिहासिक नियति भी कि युवा पंथ के श्रीधर पाठक से भेंट का और इस प्रथम रश्मि का रचना वर्ष एक ही है 1919। सुमित्रानंदन पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को कैसे उदग्र रूप में देखा, यह वृत्त द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम संपादक पद्मधर पाठक पृष्ठ 11-15-146 से प्रकट होता है। पृष्ठ संख्या 95। श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावादी धारा में मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे तथा रूप नारायण पांडे काव्य रचना कर रहे थे। इनमें से मुकुटधर पांडे ने समकालीन कविता पर आलोचनात्मक दृष्टि से भी लिखा था। छायावाद विषयक उनकी लेखमाला 1920 अपने क्षेत्र की एकदम आरंभिक समीक्षा है। स्वच्छंदतावादी वृत्तियों की उल्लेखनीय निष्पत्ति फिर राम नरेश त्रिपाठी के काव्य में मिलती है। प्रमुख रूप से आलोचक रामचंद्र शुक्ल की स्फुट कविताएं भी स्वच्छंदतावादी भावधारा से प्रेरित हैं। राम नरेश त्रिपाठी में जहाँ स्वच्छंदतावाद का सहज उल्लास है, वहीं भाषा का अनुशासन भी पूरा है। श्रीधर पाठक तथा उनके अन्य सहयोगी कवियों में खड़ी बोली का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से दोष रहित न था, ब्रजभाषा का प्रभाव भी चला आता था। राम नरेश त्रिपाठी की भाषा पूरी तरह से व्यवस्थित खड़ी बोली हिंदी है, पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसी इतिवृत्तात्मक नहीं। दोनों धाराओं के गुण उनके यहाँ एक साथ मिल जाते हैं। मिलन, पथिक तथा स्वप्न शीर्षक कवि के तीन खंड काव्य छायावाद पूर्व कविता की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। इन खंड काव्यों में कथानक की अपेक्षा सूक्ष्मता और तत्कालीन प्रबंध काव्य के गठन में नए विकास की सूचक है। कथानक की सूक्ष्मता छायावादी प्रबंध कामायनी जैसी तो नहीं है, जहां मानव जीवन की अनेक जटिल परिस्थितियों को संश्लिष्ट रूप में अंकित किया गया है। इन खंड काव्यों में चरित्रों के वैशिष्ट्य का अभाव कुछ लोक साहित्य की भावभूमि के निकट है। इस तरह सूक्ष्म कथा और हल्के रंगों वाले चित्रों के संयोग में रचनाएं एक गोचारणी सादगी लिए हैं जो उस जन जागरण के आरंभिक युग के अनुकूल थी। लोक साहित्य के कुछ अभिप्रायों का भी कवि ने प्रयोग किया है। बहते हुए शव का नदी में से योगी द्वारा निकाल लाना, प्रेमी का पृथक वेश धारण करना, अंत में योगी की कुटी पर अब तक मृत समझे जाने वाले प्रिया से भेंट, इन लोक अभिप्रायों से नव विकसित राष्ट्रीयता के भाव को संपृक्त करके कवि ने उसे अधिक व्यापक और ग्राह्य बनाना चाहा है। राम नरेश त्रिपाठी का कृतित्व अपने समय के संदर्भ में बहुमुखी है। वे मूलतः कवि हैं, ग्राम गीतों के संकलन का आरंभिक कार्य उन्होंने किया। कविता कौमुदी नाम से कई जिल्दों में हिंदी, उर्दू, बंगला आदि काव्य धाराओं का आलोचनात्मक सामग्री के साथ संकलन संपादन किया। गद्य के क्षेत्र में तुलसीदास और उनकी कविता पर विशद आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। महामना मदन मोहन मालवीय की संस्मरणात्मक जीवनी लिखी है और बाल साहित्य के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है। अनुशासन की धारा का व्यवस्थित नेतृत्व महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, पर इस धारा के पहले बड़े कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 1914 में प्रकाशित उनका प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जा सकता है। न केवल यह आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है, वरन इसमें एक नई और आधुनिक दृष्टि का उपोद्घात मिलता है। मनुष्य और परम तत्व के बदलते हुए रिश्तों की समीक्षा के क्रम में हमने लक्षित किया था कि आधुनिक काल में मनुष्य संपूर्ण रचना और चिंतन के केंद्र में है। ईश्वर अब व्यक्तिगत आस्था का विषय है, चित्रण का नहीं। इस दृष्टिकोण की पहली सशक्त उद्घोषणा प्रिय प्रवास के रचना विधान में तो मिलती ही है, कृति की लंबी भूमिका में भी कवि ने इसका निर्भ्रांत आख्यान किया है। ग्रंथ का विषय शीर्षक के अंतर्गत हरिऔध लिखते हैं, मैंने श्री कृष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं। इस रूप में हिंदी मानव सब विचार के साथ साथ संस्कार में भी आधुनिकता ऐहिकता की ओर अग्रसर दिखता है। पुराण कथा के प्रति कवि की दृष्टि में यह पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसका प्रभाव रचना के समूचे विधान में परिलक्षित होता है। राधा अप्रिय प्रवास में संपूर्णता विरहिणी ही नहीं है, वे अपने इस निजी दुख को सारे समाज के दुख में विलीन कर देती है और समाज सेवा का व्रत लेती है। शताब्दियों से चले आते राधा के चरित्र में यह एक सर्वथा नई भंगिमा हरिऔध ने उकेरी है। वृत्त और चरित्र में हरिऔध ने एक और परिवर्तन किया और खड़ी बोली के संबंध में ऐसे ही मौलिक प्रयोग उन्होंने दूसरी ओर किए। स्मरणीय है कि इस समय तक यह विवाद का विषय था कि कविता खड़ी बोली में लिखी जाए या कि ब्रज भाषा में। स्वयं हरिऔध दोनों आधार बोलियों का प्रयोग कर रहे थे। रस शास्त्र के संबंध में उन्होंने अपने ग्रंथ रस कलश में उदाहरण ब्रज भाषा में लिखे, पर नए युग की अभिव्यक्ति के लिए खड़ी बोली को स्पष्ट रूप में स्वीकार किया। प्रिय प्रवास की भूमिका में उन्होंने अपना मत दिया है। अब मुझे केवल इतना ही कहना है कि समय का प्रवाह खड़ी बोली के अनुकूल है। इस समय खड़ी बोली में कविता करने से अधिक उपकार की आशा है, अतएव मैंने भी प्रिय प्रवास को खड़ी बोली में ही लिखा। वास्तव में बात यह है कि यदि इसमें कांतता और मधुरता नहीं आई है तो यह मेरी विद्या बुद्धि और प्रतिभा का दोष है, खड़ी बोली का नहीं। एक बड़े सिद्धांत की चरितार्थता के लिए स्वयं अपने को छोटा करके मानना हरिओत के काव्य व्यक्तित्व की विराटता का ही सूचक है। खड़ी बोली के पक्ष को भली भांति प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी रचना में उनके कई रंग प्रस्तुत किए। संस्कृत वर्णवृत्तों में नितान्त तत्सम पदावली प्रयोग प्रवास में प्रयुक्त की तो एकदम बोलचाल की खड़ी बोली अपने चौपदों में। एक सिरे पर भाषा का रूप था रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दु बिम्बानना, तो दूसरी ओर मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जत्था मुंडेरे पर खड़ा। हरिओत यदि द्विवेदी युग के पहले कवि हैं तो मैथिली शरण गुप्त इस युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि। खड़ी बोली कविता को लोकप्रिय बनाने में उनका योगदान असाधारण है, और विडंबना यह है कि आलोचकीय मूल्यांकन में वे उतने ही साधारण कवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त की महत्ता इस बात में है कि व्यापक आलोचकीय अनिच्छा के बावजूद वे आधुनिक काल के एक बड़े कवि हैं। उनकी लोकप्रियता के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे सीधी सरल भाषा, पौराणिक कथानकों का चुनाव, गृहस्थ जीवन की महिमा का आख्यान, व्यापक हिंदू नैतिक मूल्यों का समर्थन और राष्ट्रीय भावधारा की अभिव्यक्ति। पर इन कारणों के अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त के रचनाकार व्यक्तित्व का एक और पक्ष इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जिस समय वे कविता लिख रहे थे उस समय हमारे समाज और साहित्य में दो प्रकार के अभिजात प्रचलित थे, एक राजभाषा अंग्रेजी का और दूसरा पारंपरिक धर्म तथा संस्कृति की भाषा संस्कृत का। जिसके पास ये दोनों प्रकार थे वह बौद्धिकी का सिरमौर था, और जिसके पास केवल एक था वह भी समाज और साहित्य में महत्वपूर्ण था। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर और दार्शनिक राधाकृष्णन के नाम प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त के पास इनमें से कोई अभिजाते न था, पर उनके मन में अपने देशीपन का गहरा आत्मविश्वास था। कविता और निजी जीवन दोनों में उन्होंने अंग्रेजियत या संस्कृतज्ञता का आतंक नहीं माना और न ही उनकी अवज्ञा की। वे अपने खाटे चरित्र में दृढ़ बने रहे। साधारण बोलचाल की खड़ी बोली, हिंदी के जातीय मात्रिक छंद, गृहस्थ जीवन में प्रचलित पौराणिक आख्यान और कुल मिलाकर अपनी साधारणता में विनम्र आत्मविश्वास, यही वे बुनियादी तत्व हैं जिनसे मैथिली शरण गुप्त का रचनात्मक व्यक्तित्व निर्मित हुआ है, और इनका स्रोत किसी प्रकार के अर्जित अभिजात में न होकर अपने सामान्य आस्तिक हिंदू गृहस्थ जीवन में था। इन तत्वों के संयोग में राष्ट्रीय भावधारा आप से आप विकसित होती है। राष्ट्रीयता की भावना को विचारकों ने यत्नज माना है। उनके अनुसार देश की पराधीनता जो अपने आप में एक असहज स्थिति है, राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देती है। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीयता पराधीनता के दौर में विकसित होकर भी आत्मीय भाव से सहज है। उसमें आक्रामकता का अभाव है तो वैष्णव भावना की निष्ठा है। ये कई विशेषताएं मिलकर महात्मा गांधी की राष्ट्रीयता के समतुल्य चलती हैं। इसलिए गांधी जैसे राष्ट्रपिता हैं वैसे ही महज सहज भाव से मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि हैं। ये उपाधियां किसी व्यक्ति या समूह द्वारा प्रदत्त नहीं, मानो पूरे राष्ट्र के द्वारा दी हुई हैं। इस्लाम के आक्रमण ने मध्यकाल में जिस प्रकार भक्ति भावना को उभारा, आधुनिक काल में अंग्रेजी शासन ने उसी प्रकार राष्ट्रीयता की भावना को। क्रमशः एकता की ओर उन्मुख समाज में राष्ट्र भावना जैसे भक्ति भावना के स्थानापन्न बन गई हो। विविध वर्गों की एकता और समानता जिसका घोषित लक्ष्य थी, वैष्णव निष्ठा, अनाक्रामकता की भावना और समूचे देश के लिए रामराज की परिकल्पना, ये सांझी विशेषताएं हैं तुलसी और मैथिली शरण गुप्त के काव्य की और महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन की। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ये व्यक्तित्व एक दूसरे के रचनात्मक संपर्क में आते हैं। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना में न दैन्य है और न पाखंड। प्रबंध काव्य के इतिवृत्त परक रूप को स्वीकार करके उन्होंने परंपरित हिंदू पौराणिक गाथाओं को भक्तिकालीन कवियों के समानांतर प्रस्तुत किया, और यहाँ भक्त कवियों के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी याद हो आती है, मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्य पूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। आधुनिक काल के आरंभिक चरणों में हिंदी प्रदेशीय सामान्य जनता के बीच मैथिली शरण गुप्त का योगदान भी बहुत कुछ इसी प्रकार का कहा जा सकता है। भारत भारती में कवि ने अपनी राष्ट्रीय भावना की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है, तो साकेत में अपनी भक्ति भावना की। ये दोनों कवि की सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं रही हैं। भारत भारती में जागरण का स्वर प्रधान है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, तो साकेत में पौराणिक विश्वासों के पुनर्मूल्यांकन का प्रयत्न है। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। राम कवि के लिए मानव और ईश्वर दोनों एक साथ हैं। परम तत्व के साथ संबंध का यह परवर्ती रूप है जिसकी ओर इस विवेचन क्रम में पहले भी संकेत किया जा चुका है। राम के तथा अन्य संबद्ध चरित्रों के रूप को इसी भाव से यहाँ ग्रहण किया गया है। 8वें सर्ग में राम की घोषणा इस स्थिति को स्पष्ट करती है। पृष्ठ संख्या 98। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। बहुजन मन में है बने ऋक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निचकर से। पौराणिक अति प्राकृत तत्वों, उदाहरण के लिए बंदर भालुओं का राम के लिए सहायक होना का निरसन करते हुए कवि राम के वृत्त को आधुनिक तार्किक धरातल पर अवतरित करता है। राम उसके निच के लिए पर ब्रह्म रूप है या उसकी अपनी आस्था की बात है। तर्क और आस्था का यो समन्वय आधुनिक संवेदना की एक विशेष पहचान कही जा सकती है। यह तर्क की भावना ही है जो कवि को पौराणिक चरित्रों के पुनर्मूल्यांकन की ओर प्रेरित करती है। आधुनिक काल के एकदम आरंभ में बंगला कवि माइकल मधुसूदन ने अपने काव्य मेघनाद वध में पौराणिक परंपरा से गृहित दैत्य चरित्रों को एक नए आलोक में प्रस्तुत किया था। माइकल की रचनाओं से प्रेरित और प्रभावित होकर मैथिली शरणगुप्त ने मधुप उपनाम से उनमें से कई का पद्यबद्ध अनुवाद प्रस्तुत किया। हरिओद ने फिर प्रिय प्रवास में शाश्वत विरणी राधा को एक नए लोकोन्मुखी रूप में चित्रित किया। इसी क्रम में मैथिली शरणगुप्त अपने साकेत में एक ओर राम कथा की उपेक्षिता और मिला को काव्य के केंद्र में स्थान देते हैं और साथ ही साथ दूसरी ओर राम की विमाता अब तक की लांछिता कैकेयी को एक नई सहानुभूति प्रदान करते हैं। उर्मिला प्रेयसी पत्नी है कैकेयी माँ। इन दो चरित्रों के बीच में मैथिली शरणगुप्त ने जैसे भारतीय नारी को उसकी संपूर्णता में अंकित कर दिया हो एक नई भंगिमा देकर, और कहा जा सकता है कि इन दोनों चरित्रों में वे सबसे अधिक कवि हैं। साकेत के 8वें और 9वें सर्ग जिसके प्रमाण हैं। इति वृत्तात्मकता के लिए अख्यात कवि की सूक्ष्म परिकल्पना यहाँ दृष्टव्य है। 9वें सर्ग में विरहिणी उर्मिला का गीत है, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। यहाँ यौवन को बच्चे के रूप में संबोधित करके जैसे उसके वेग को शमित करने का यत्न है। प्रसाद ने कमायनी में अपने ढंग से सौंदर्य को चपल शिशु कहा है, लज्जा जिसकी धाय है। दूसरी ओर प्रिय के अभाव में वत्सल भाव का उल्लेख जैसे उर्मिला की विरह को शमित करने के बजाय और तीव्र कर देता है। यो कवि न केवल पौराणिक क्षेत्रों की नई व्याख्या करता है, नारी जीवन को एक नई आस्था और कोमलता और साथ ही साथ नया आत्मविश्वास प्रदान करता है। जैसे तुलसी मूलतः पारिवारिक जीवन की चितेरे हैं, वैसे ही आधुनिक काल में मैथिली शरणगुप्त। दोनों का एक मूल स्रोत राम कथा है जो भारतीय परिवार की उज्ज्वलतम गाथा है। रामायण में यदि परिवार जीवन का मांगल्य और सौहार्द है तो महाभारत में बिखराव और टूटन, दोनों काव्य भारतीय साहित्य के लिए आदि रूप है जिनके अनेक रूप रूपांतर विविध कवियों ने बुने हैं। जैसा संकेत किया गया यहाँ भी मैथिली शरणगुप्त के दृष्टिकोण में तर्क और आस्था का एक प्रीतिकर मिश्रण है।